जिसका जहाँ से करियर स्टॉप हुआ था उसी ग्राउंड से.
वो कॉन्फिडेंस लेवल जो होता है ना, वो लेग स्पिनर का बहुत जरूरी होता है.
He has a great record and I think record speaks for Anil Kumble.
Shakarini beat the offside trap. Shakarini scores.
मोहम्मद आमिर लौट कर दोबारा उसी लॉर्ड्स में. यासिर शाह की स्पिन क्या इंग्लिश बैटिंग को नचाएगी? अनिल कुंबले अब कोच के रूप में और यूरो फुटबॉल का नॉकआउट मरहला. खेल के मैदान से अब्दुल रशीद शकूर का सलाम. पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के दौरे इंग्लैंड का बाकायदा आगाज अभी हुआ नहीं है, लेकिन सख्त और मुश्किल सीरीज की तैयारी उसने जरूर शुरू कर रखी है. पाकिस्तानी टीम की ये ट्रेनिंग हैम्पशायर काउंटी में जारी है, जिसके बाद वो समरसेट और ससेक्स के खिलाफ दो सहरोजा मैचेस खेलेगी और फिर 14 जुलाई से लॉर्ड्स में इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में मध्य मुकाबिल होगी. जी हाँ, ये वही लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड है जहाँ 6 साल पहले उसे स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल की शक्ल में बदतरीन शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा था. स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल में शामिल एक किरदार फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर 5 साल अब पाबंदी के बाद दोबारा इसी लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड से अपने टेस्ट करियर की दोबारा शुरुआत करेंगे. मोहम्मद आमिर इसे अपनी खुशकिस्मती समझते हैं कि जिस मैदान में उनका करियर खत्म हुआ था वहीं से वो दोबारा इब्तिदा कर रहे हैं.
वेरी लकी, क्योंकि मैं आई थिंक दुनिया का बहुत कम लोगों में से एक वो लड़का होऊंगा कि जिसका जहां से करियर स्टॉप हुआ था उसी ग्राउंड से उसी टीम के साथ स्टार्ट हो रहा है. आई थिंक इससे लकी चीज मेरे लिए कुछ हो नहीं सकती.
तो क्या 6 साल पहले मोहम्मद आमिर ने जो भयानक गलती की थी उससे कुछ सबक सीखा भी या नहीं?
मैं हमेशा से ये कहता आया हूँ कि अगर हमारे केस से भी कोई सबक नहीं सीखता तो वो बहुत बड़ा बेवकूफ है, क्योंकि हमने सजा काटी. मुझे पता है कि वो 5 साल मेरे पे कैसे गुजरे.
6 साल पहले वो मैन ऑफ द सीरीज रहे थे, लेकिन स्पॉट फिक्सिंग में मुलविस होकर उन्होंने अपनी हर खुशी हर कामयाबी को खुद तबाह बर्बाद कर दिया था. तो अब वो किस तरह की कारकर्दगी की तवक्को रखे हुए हैं?
अब मेरा गोल ये है कि मैं एक तो बेस्ट प्लेयर ऑफ द सीरीज बनूं, और जिसमें पाकिस्तान मेरा स्टैंड ये होगा कि अल्लाह करे पाकिस्तान ये टेस्ट सीरीज जीते, इससे बड़ा एजाज नहीं होगा. और लॉर्ड्स में अल्लाह करे कि मैं 5 आउट करूं, मेरा ऑलरेडी ऑनर बोर्ड पे नाम है और एक और दफा लिखा जाए.
इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज में मोहम्मद आमिर के अलावा जिस दूसरे बॉलर से बहुत ज्यादा तवक्कुआत वाबस्ता की जा रही हैं, वो लेग स्पिनर यासिर शाह हैं. इसकी वजह यह है कि इंग्लैंड में स्पिनर्स हमेशा नुमाया रहे हैं, जिनमें शेन वॉन, मुताया मुरलीधरन, अब्दुल कादिर और मुश्ताक अहमद काबिले जिक्र हैं. मैंने इंग्लिश कंडीशंस में स्पिनर्स के मौसर और कामयाब होने की वजह जानने के लिए साबिक लेग स्पिनर मुश्ताक अहमद को जहमत दी और उनसे पूछा कि पहले तो ये बताइए कि यासिर शाह के कामयाब होने के कितने इम्कान हैं, और इंग्लैंड में स्पिनर्स के कामयाब होने की वजह ये तो नहीं कि इंग्लिश बैट्समैन स्पिनर्स पर कमजोर हैं?
यासिर जिस तरह की फॉर्म में जा रहे हैं पिछले कुछ जिसमें उन्होंने 10-12 टेस्ट मैचों में 76 या 78 आउट किए हुए हैं, तो वो कॉन्फिडेंस लेवल जो होता है ना, वो लेग स्पिनर का बहुत जरूरी होता है. तो आई थिंक यासिर का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है इशू फिटनेस का और उसकी रिदम का, क्योंकि लेग स्पिनर का रिदम होना बहुत जरूरी है. और अल्लाह के फजल करम से ही इज बीन बॉलिंग वेल, वो अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं एंड ही विल बी द ट्रम्प कार्ड फॉर पाकिस्तान. गोरे पहले आज से 10-15 साल पहले शायद इतना अच्छा ना खेलते हों, मगर आज की टेक्निक आप देखें कि इंडिया को इंडिया में हरा के चले गए हैं और वो अच्छी क्रिकेट खेल के गए हैं एशिया में रिसेंटली. तो आई थिंक ये बात नहीं है कि उनको स्पिन नहीं खेलनी आती. स्पिनर की जो वेरिएशन होती है वो बड़ी की रोल का अदा करती है क्रिकेट में. जैसे गुगली होती है आपका फ्लिपर होता है और आप अच्छी बॉलिंग करते हो, आप गंदे बॉल नहीं करते. शेन वॉन की सक्सेस ये थी, वो गंदा बॉल नहीं करते थे. मुरलीधरन की भी ये सक्सेस थी, अनिल कुंबले की भी ये सक्सेस थी, गंदे बॉल नहीं करने आपने. और यासिर की भी ये सबसे बड़ी खूबी यही है कि वो गंदे बॉल बहुत कम करते हैं.
मुश्ताक अहमद से मेरा अगला सवाल था कि आप इंग्लैंड के बॉलिंग कोच भी रहे और अपना तजुर्बा इंग्लिश स्पिनर्स को मुंतकिल भी किया, लेकिन अब तो इंग्लैंड के पास कोई वर्ल्ड क्लास स्पिनर्स ही नहीं है.
अब बिल्कुल सही बात है, मगर वो मोइन अली पे बैंक कर रहे हैं इस वक्त. मोइन अली ने 2 सीरीज में बड़ी अच्छी बॉलिंग की है. आपने देखा है इंडिया खिलाफ उसने 21-22 आउट कर दिए थे, ऑस्ट्रेलिया खिलाफ एशियज में बड़ी अच्छी बॉलिंग की थी. तो मोइन अली एक अच्छे स्पिनर ऑलराउंडर की शक्ल में आ रहे हैं. उसके बावजूद देखें एक स्पिनर अभी उन्होंने बॉथविक को रखा है, आदर रशीद को उन्होंने लिया है वापस. तो आई थिंक 2-3 स्पिनरों के ऊपर ये बैंक करते हैं.
मुश्ताक से मैंने पूछा कि पाकिस्तानी बॉलर्स की सलाहियतों पर सबको यकीन है, लेकिन बैट्समैनों पर कितना एतमाद किया जा सकता है?
सबसे इम्पोर्टेंट है नया बॉल फेस करना, और इसके लिए जो भी ओपनर खेलेंगे उनको अपने रोल का पता होना चाहिए कि मेरा रोल क्या है. अगर हमारी यूनस की, अजहर अली की, मिसबा की और असद की और सैफी की बारी आ जाती है 35-40, 40-50 ओवर के बाद, अगर हमारे जो मेन बैट्समैन है वो जाके खेलेंगे तो फिर उनको मोमेंटम मिलेगा. गेंद पुराना हुआ होता है, इतनी जान नहीं होती, बॉलर थक जाते हैं, तो उसमें फिर आप यूटिलाइज करने होते हैं. इसलिए जो इंग्लैंड में सबसे इम्पोर्टेंट जो होती है वो ओपनर्स का रोल होता है. क्योंकि ओपनर्स इन्हें सेट करनी होती है टून। अगर वो 10-8 ओवर भी सर्वाइव कर देते हैं, दो ओपनरों में से एक ओपनर भी आउट हो जाता है, 10 ओवरों में अगर आप 30-25 रन भी करते हैं और एक विकेट गिरती है, तो आपके पास बहुत चांसेस होते हैं कि आपकी नीचे से पार्टनरशिप लंबी लगती है। और इंग्लैंड में याद रखें, स्कोरिंग ऑप्शन बड़ी खुल जाती है, फिर स्कोर रुकता नहीं है वहां पे।
पाकिस्तान के बाद अब भारतीय क्रिकेट टीम को भी नया कोच मिल गया और अपने दौर के मशहूर लेग स्पिनर और पाकिस्तान के खिलाफ इनिंग्स में 10 की 10 विकेटें हासिल करने वाले अनिल कुंबले एक साल के लिए भारतीय क्रिकेट टीम के कोच बना दिए गए हैं। ये तब्दीली भारतीय क्रिकेट में क्या रंग लाएगी? दिल्ली से आदेश कुमार गुप्ता।
हिंदुस्तान के साबिक कप्तान और धुरंधर लेग स्पिनर रहे अनिल कुंबले को कल BCCI यानी भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम का नया हेड कोच बना दिया। इसका ऐलान खुद BCCI के प्रेसिडेंट अनुराग ठाकुर ने किया।
Yes, the period is for 12 months. He has been a match winner for India. He has a great record. And I think record speaks for Anil Kumble.
इस ऐलान के साथ ही उन तमाम अटकलों पर रोक लग गई जिसमें माना जा रहा था कि अभी कुछ अरसे पहले तक टीम के टेक्निकल डायरेक्टर रहे रवि शास्त्री या फिर ऑस्ट्रेलिया के टॉम मूडी कोच की खोज या कोच की तलाश में सबसे आगे रहने वाले नाम हैं। अब जब अनिल कुंबले कोच बन ही गए हैं तो उन्होंने भी सबसे पहले यही कहा कि उनका काम खिलाड़ियों के पीछे रहकर काम करना है।
Put my hand up for challenges and I'm ready to take up this role. Coach's role, you know, in my opinion, is always done at the background. And the players come first.
खुद पीछे रहकर टीम को आगे बढ़ाएंगे, कहना अनिल कुंबले का, जो खुद कभी मैदान में सबसे आगे रहते थे। उनके रिकॉर्ड इस बात की गवाही देते हैं। हिंदुस्तान के साबिक विकेटकीपर बल्लेबाज विजय दहिया कहते हैं कि अब अनिल कुंबले को कोच बना ही दिया है तो उनकी काबिलियत पर भरोसा भी रखें।
जो बताया गया था BCCI के द्वारा, जो गाइडलाइंस उस पे पूरे उतरे हैं। अपना गेम प्लान उन्होंने जरूर बताया होगा टीम के लिए, वो क्या चाहते हैं, किस तरीके का रोड मैप उन्होंने तैयार किया है, क्या वो लेके आएंगे अपने साथ जब एक टीम के साथ वो जुड़ेंगे, तो उस सब लिहाज से मुझे लगता है ये सही चीज है। और एक बहुत अहम चीज ये हो जाती है, जब किसी को एक पद दे दिया हो ना, तो फिर उसके ऊपर विश्वास हमें जताना चाहिए और कॉन्फिडेंस देना चाहिए और उनको बैक करना चाहिए।
वैसे BCCI के प्रेसिडेंट अनुराग ठाकुर ने अभी तक टीम के टेक्निकल डायरेक्टर रहे रवि शास्त्री की भी दिल खोलकर तारीफ की।
जब रवि शास्त्री की नियुक्ति हुई थी उस समय टीम की परफॉर्मेंस क्या थी, उनके आने के बाद टीम की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी हुई और बोर्ड उनकी भूमिका से संतोष था, खुश था।
अब लाख टके का सवाल, BCCI फॉरेन कोच क्यों नहीं चाहता? जवाब जाने वाने क्रिकेट एक्सपर्ट अयाज मेमन का।
फॉरेन कोच डंकन फ्लेचर के साथ इतना अच्छा रिजल्ट नहीं आया था इंडिया का, गैरी कर्स्टन के साथ बहुत अच्छा आया, ग्रेग चैपल के साथ अच्छा नहीं था, लेकिन जॉन राइट के साथ बहुत जबरदस्त रिजल्ट्स आए थे। तो ये जरूरी नहीं है कि फॉरेन कोच ही इंडिया के लिए काम कर देगा। ऐसा भी हुआ है कि फॉरेन कोचेस जो है वो एक प्रॉब्लम बन गए थे इंडियन क्रिकेट के लिए। मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये सोच अब बढ़ गई है कि इंडियन कोच अगर हो तो बेहतर है।
अनिल कुंबले को एक साल के लिए हिंदुस्तानी टीम का हेड कोच बनाया गया है और वैसे भी अब हिंदुस्तानी टीम को ज्यादा से ज्यादा टेस्ट मैच अपनी ही जमीन पर खेलने हैं। ऐसे में फिलहाल अनिल कुंबले की नई राह बेहद मुश्किल नहीं होनी चाहिए।
बोतलें, डब्बे, जो कुछ भी हाथ में आया मैदान में दे मारा। हरीफ टीम का जो तरफदार हत्थे लगा उसकी धुनाई कर दी। मैदान से बाहर भी हंगामा अपने जोरों पर, कि कितने ही बुरी तरह जख्मी हो गए। गिरफ्तारियां भी अमल में आईं और रूस और इंग्लैंड को ये वार्निंग भी मिल गई कि आपने अगर अपने तमाशाइयों को काबू ना किया तो टूर्नामेंट से बाहर होने के लिए तैयार हो जाएं। ये सब कुछ यूरो फुटबॉल की इब्तिदा में देखने को मिला, लेकिन अब कदरे सुकून है और तमाम तर तवज्जो नॉकआउट मरहले पर मरकूज है जिसका कल से आगाज हो रहा है। रूनी की इंग्लैंड, क्रिस्टियानो रोनाल्डो की पुर्तगाल, गैरेथ बेल की वेल्स आखिरी 16 टीमों में जगह बनाने में कामयाब हो गई हैं, तो दूसरी जानिब वर्ल्ड चैंपियन जर्मनी और यूरो की दिफाई चैंपियन स्पेन भी प्री क्वार्टर फाइनल मरहले में हैं। सबको हैरान आइसलैंड की टीम ने किया है, जो पहली मरतबा यूरो में शरीक होते हुए नॉकआउट मरहले तक आ गई है। اور آخر میں ایشین اسپورٹس بیٹ سلطان محمود کی خبروں کے ساتھ سبا ناز.
انگلینڈ کا دورہ کرنے والی پاکستانی خواتین کرکٹ ٹیم کو ون ڈے سیریز میں شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے. انگلینڈ نے پہلا میچ 7 وکٹوں سے جیتا اور دوسرے میچ میں اس نے 212 رن سے کامیابی حاصل کی. تیسرا اور آخری ون ڈے انٹرنیشنل پیر کے روز کھیلا جائے گا, جس کے بعد 3 T20 انٹرنیشنل میچوں کی سیریز کھیلی جائے گی. پاکستان ایک کرکٹ ٹیم اپنے دورہ انگلینڈ کا آغاز اتوار کے روز سے یارکشائر کے خلاف 3 روزہ میچ سے کرے گی. بھارتی کرکٹ ٹیم کا زمبابوے کا دورہ اختتام کو پہنچا. اس دورے میں بھارتی ٹیم نے 3 ون ڈے انٹرنیشنل جیتے, جبکہ T20 سیریز میں 2-1 سے کامیابی حاصل کی. بنگلہ دیشی کرکٹ بورڈ نے منہاج العابدین کو فاروق احمد کی جگہ نیا چیف سلیکٹر مقرر کیا ہے. پاکستان کی 4 رکنی سنوکر ٹیم آئندہ ماہ مصر میں ہونے والی ورلڈ 6 فریڈ بال اور ٹیم سنوکر چیمپئن شپ میں حصہ لے گی. ان کھلاڑیوں میں بابر مسیح, سہیل شہزاد, اسجد اقبال اور محمد بلال شامل ہیں.
اسی کے ساتھ اب عبدالرشید شکور کو اجازت دیجیے.